हरे कृष्ण। आप लोग आगे आना चाहेंगे या जहाँ बैठे हैं वहाँ ठीक है, संतुष्ट हैं भाई? थोड़े से आगे आ सकते हैं आप लोग, ऐसे बहुत दूर दूर लग रहे हैं, थोड़ा पास में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग आ जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और ऑफ कोर्स अंशु मैम का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को, आप लोगों को बुलाने में बड़ी मेहनत है ना, है कि नहीं है? ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत मेहनत करके आपको बुलाते हैं ताकि आप लोग कुछ थोड़ा सा भगवान की ओर भी जुड़े। और हमें पता है आप में से अधिकतर लोग जबरदस्ती आते हैं, क्योंकि सही बात है कि नहीं? पीछे जितने लोग बैठे हैं, नहीं यहाँ वाले नहीं, आगे वाले नहीं, आज सब स्वयं इच्छा वाले हैं, पिछली बार जबरदस्ती वाले थे, कुछ थे जो ऑर्डर आता है ऊपर से तो करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। हम जब यहाँ पर आए खास करके इस घर में, और जब साईं बाबा को देखा यहाँ पे, तो मैं सालों पुरानी बात याद आ गई। जब हम स्कूल कॉलेज में थे, स्कूल से, तो बहुत शिरडी जाया करते थे। ओ हम लोग बम्बई में पढ़ते थे, शिरडी 4 घंटे का रास्ता था उस समय, पता नहीं कितना है, 30 साल पहले की बात है। 3-4 घंटे लगते थे गाड़ी से, तो हम लोग चले जाया करते थे 15 दिन में, 20 दिन में एक बार वहाँ रहते थे, या 1-2 दिन रुकते थे, नहीं तो सुबह जाके शाम को आ जाते थे, ज़्यादा दूर नहीं था। और वहाँ से पास में शनि शिंगणापुर भी है, सो वहाँ भी जाया करते थे। वहाँ कम जाते थे, ज़्यादा शिरडी जाते थे। और हमें ध्यान है, एक्चुअली देखा हमने तो वही सब ध्यान आ रहा था, कि मैं ध्यान है बहुत पहले जब गए थे तो हम बैठे हुए थे मंदिर में, एकदम मंदिर के बीच में सामने, उस समय अभी पता नहीं क्या भीड़ होती है या क्या नहीं, उस समय तो बहुत खाली होता था, तो हम लोग ऐसे बैठे, हम बैठे थे और मंदिर पूरा कवर्ड है, बंद है, तो हम देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो अचानक कहीं से एक पत्ता आकर गिरा। और हमें उस समय लगा, क्योंकि हमने पढ़ा था साईं बाबा के बारे में, कि जब आए थे तो किसी को पता नहीं था, एक छोटा बच्चा शादी की पार्टी के साथ आ गया और फिर मस्जिद में रहने लगा, मंदिर के सीढ़ियाँ धोने लगा, और धीरे धीरे आगे चल के लोगों को पता चला कि ये साईं बाबा है। तो हम भी यही सोच रहे थे कि पत्ता गिरा मतलब कुछ विशेष है, आगे चलकर लोगों को पता चलेगा कि हम भी कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो ऐसे मन में विचार उस समय आया करते थे। और हमने बहुत पढ़ा भी, वहाँ पर एक उनका पब्लिकेशन है साई चरित्र, साई चरित्र बहुत मोटी किताब है, सो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, हमें बहुत रुचि थी जानने में इनके विषय में। सो तो खैर सब अभी वो याद आ रहा है कि क्या क्या कैसे जाया करते थे और क्या क्या किया करते थे वहाँ पर। और हमने ये पाया कि जब वहाँ जाते थे स्कूल में भी कॉलेज में भी, फिर बाद में जब भक्ति में आ गए, कृष्ण के भक्ति में, तब भी हमेशा कृतज्ञता उनके प्रति बनी रही। तो हमें लगता है कि उन्होंने देखा होगा हमारे अंदर कुछ, साईं बाबा ने, कि अब तैयार हो गए, अब जाना चाहिए आगे, तो उनकी कृपा से आगे बढ़ पाए हैं कृष्ण की ओर। तो इसलिए सदैव उनके प्रति हमारी कृतज्ञता रहती है कि आज भले ही भक्ति के पथ पर हैं, लेकिन एक चीज़ हमने देखी जो हम अधिकतर शेयर करना चाहते हैं, कि भारत में हम जब भक्ति करते हैं तो भावुकता से कर लेते हैं, ज्ञान के आधार पर नहीं। और धर्म और आध्यात्मिकता के बीच के अर्थ को नहीं समझते। हमारे लिए सब धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, भगवद्गीता पढ़ना धर्म है, किसी की मदद करना धर्म है, भूखों को खाना खिलाना धर्म है, हमारे लिए सब कुछ धर्म है। गायों को रोटी खिलाना धर्म है, स्वाभाविक है, हम लोग बचपन से करते आए हैं। यहाँ होता है कि नहीं आप लोगों के? होता है। हमें ध्यान, हम जब छोटे थे तो हमारी जो माँ थी, माता जी थे हमारे, तो वो बनाते थे, हम लोग को बस भूख लग रही है, अब खाना शुरू करना है, तो हमको एक रोटी, पहले दो रोटी देती थी कि पहले जाके गाय को खिला के आओ। और बम्बई में गाय ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर तो कहीं निकले सामने मिल जाती, यहाँ पर हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। बम्बई में गाय ढूंढना बहुत मुश्किल, और हम नीचे जाकर ढूंढा 15-20 मिनट गाय नहीं मिलती थी, फिर कहीं दूर कहीं मिल जाए उसको खिलाओ और जाओ। तो हमें कभी कभी गुस्सा आता था कि क्या है, खाना बनाए खाओ जाओ, ये क्या है। लेकिन ये हमारी सभ्यता रही है, कल्चर है, और आप सबके घर में, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, आप सब ने इसका अनुभव किया है, और इसको ही हम धर्म मानते हैं। तो ये धर्म का अंग है, हिस्सा है, लेकिन धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत भेद है, जिसको हम लोग समझते ही नहीं, जीवन ऐसे निकल जाता है। आध्यात्मिकता कैसे प्रारंभ होती है? आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है, आप जो कर रहे हो, जिस पथ पर चल रहे हो, चलते रहिए, लेकिन एक ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ज्ञान को प्रयास कीजिए। ये कहना चाहिए ऊंचा स्वाद। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ऊंचा स्वाद लेना चाहिए। तो हम लोग अभी जो सोचते हैं कि धर्म है, वो धर्म है, लेकिन उससे परे आध्यात्मिकता है, जो किससे प्रारंभ होती है? आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है अपने आप को जानने से। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम लोग दुनिया भर की चीजें जानते हैं, मशीनों के बारे में जानते हैं, अब तो चंद्रमा के बारे में भी जानने लगे हैं कि क्या है वहां पर, क्या नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर कौन है, हम कौन हैं, ये जानने का प्रयास ही नहीं करते। कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, बड़े आश्चर्य की बात है। आप मशीनों के बारे में सिखा रहे हो, कारों के बारे में सिखा रहे हो, आप रॉकेट के बारे में सिखा रहे हो, लेकिन जिसको सिखा रहे हो उसके बारे में नहीं सिखा रहे हो। थोड़ा बहुत सिखा देते हैं कि आपके शरीर में किडनी यहाँ है, पैनक्रियस यहाँ है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसी दवाई खा लो ठीक हो जाए, बस। तो ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिकता है, अर्थात अध्यात्म से जुड़ना, अपनी पहचान से जुड़ना, अपनी पहचान नहीं खोना। आज भी हमने अपनी पहचान किसी धर्म विशेष से बनाई है, हमने पहचान किसी जाति से बना ली है, लेकिन हमारी पहचान न कोई धर्म विशेष से है, न जाति विशेष से है। हमारी पहचान एक ऐसे संबंध से है जिसको हम भूल चुके हैं। जब तक उस संबंध से हमारी पहचान नहीं होती है, हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती। आपने अनुभव किया होगा, जीवन में सब कुछ मिलने पर भी एक खालीपन रहता है। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो सोचता है कि पैसा आएगा तब सब हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वो सोचता है ये तो मुझे आनंद ही नहीं दे रहा। थोड़े समय के लिए चीजें आनंद देती हैं, लेकिन उसके बाद क्या? हम एक बार बम्बई से गोवा फ्लाइट में जा रहे थे, प्लेन में, तो हमारे साथ में एक व्यक्ति आकर बैठे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। हमें तो बाद में पता चला कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट पर प्लेन उतरा तो रनवे पर उनकी गाड़ी आई थी। भारत में ऐसा होता नहीं, केवल प्रधानमंत्री वगैरह के लिए होता है, विदेशों में तो फिर भी हो जाता है, लेकिन भारत में हमने नहीं देखा कि किसी रनवे पर जैसे ही प्लेन से उतरे वहीं उनकी गाड़ी खड़ी, मतलब कितने बड़े व्यक्ति होंगे। तो हमारे साथ वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने खुद ही बताया कि लंदन में, यूरोप में, कई जगहों पर उनके बिजनेसेस हैं, एज हो चुकी थी उनकी काफ़ी। तो उन्होंने हमसे एक बात पूछी, उन्होंने पूछा कि देखिए आज मेरे पास धन है, कोई कमी नहीं है, इतना धन है कि सरकार को कम पड़ जाए तो हम लोग उसे ले लेते हैं। और इन्फ्लुएंस वो बता रहे थे कि जब भगवद गीता का ये तकलीफ हुई थी, ये कंट्रोवर्सी हुई थी रशिया में, तो उन्होंने मिनिस्टर्स को फ़ोन किया था, मतलब इस स्तर का है। तो उन्होंने कहा आज मेरे पास धन है, इन्फ्लुएंस, और बोले मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। वो कहने लगे मेरी जो पोती है वो बहुत अच्छे भगवद्गीता के श्लोक बोलती है, अच्छे स्कूल जाती है, मेरा बच्चा कल्चर्ड है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं मेरा एक प्रश्न है आपसे। तो हमने कहा जब आपके पास सब कुछ है और पैसा है, इन्फ्लुएंस है और परिवार अच्छा, ये बहुत दुर्लभ होता है, ये मुश्किल है कि आदमी का परिवार भी अच्छा हो, धन भी हो, इन्फ्लुएंस भी हो, जो चाहिए उसको मिल जाए, ये बहुत कम होता है। या तो परिवार अच्छा नहीं होगा, परिवार अच्छा होगा तो धन नहीं होगा, धन होगा तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसा कुछ बहुत हो। तो उसने कहा लेकिन हमारा एक प्रश्न है आपसे। हमने कहा क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा अब क्या नेक्स्ट, इसके आगे क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं इसके आगे करना क्या है, पैसा बहुत कमा लिया, इन्फ्लुएंस बहुत कमा लिया, नाम कमा लिया, बोले अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है? हम सोचे थे अगर राजनीति में होते तो ये प्रश्न नहीं करते कि नेक्स्ट क्या है, क्योंकि वहां तो मरने तक बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, चला नहीं जा रहा है, एक सहारे से चलेगा, लेकिन बनना उसको राष्ट्रपति है या बनना उसको। तो हमने उनको समझाया, हमें उस समय भी लगा कि देखिए व्यक्ति एक स्तर पर आकर चीजें रुक जाती हैं कि अब क्या, नेक्स्ट क्या, और वहां से आध्यात्मिकता का प्रारंभ होता है कि अब हम और ऊंचे चीजों को जान सके, पहचान सके। इसलिए आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है अपने संबंध को भगवान से जानना, उससे अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बाकी चीजों से नहीं, इस जाति में है, इस धर्म के हैं, ठीक है वो तो समाज में एक रहने की व्यवस्था है, उसको मानना चाहिए, लेकिन पहचान हमारे संबंध भगवान से। और जब वो पहचान होती है तो हमें किसी से द्वेष नहीं होता, हम किसी से घृणा नहीं करते। हमारी हिंदी ठीक है ना, आप लोग समझते हैं? उत्तर भारत में हिंदी बोलने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि आप लोगों की हिंदी इतनी श्रेष्ठ है, बड़ी महान। हम जब यहाँ आए आए थे, एक दो लोगों ने मैं ऐसी हिंदी बोली, हम डर गए कि भाई यहाँ बोल पाएंगे कि नहीं हिंदी हम। तो अपनी पहचान, हमारी पहचान सच्ची है कि हम किसके अंश हैं, कौन हमारे पिता हैं, ये हमारी पहचान है। इसलिए भगवान से जब तक संबंध नहीं होता, पहचान नहीं, असली पहचान नहीं आ सकती है, तो नकली थोड़ी बहुत दिन के लिए रहती है। जैसे मान लीजिए आज हम किसी परिवार में हैं, हम कुछ धन कमा लिया, हमने कुछ कर लिया, कल को मर जाएंगे, किसी दूसरे परिवार में जन्म लेंगे, राइट? तब पहचान क्या होगी हमारी? आज हमारी बड़ी अच्छी पहचान है, हम फला फला व्यक्ति हैं, कुछ साल बाद मृत्यु के बाद फिर जन्म लेंगे, फिर हमारी पहचान ही बदल जाएगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो उसने अपना धन कमाया, बच्चों को दिया, सब किया, बहुत ज़्यादा उसको अटैचमेंट था, क्या होगा मेरे धन का, क्या होगा, ऐसे में ही मर गया। और जब मरा तो उसने सामने ही एक मोची रहता था, उसके बच्चे के ग्रुप में जन्म लिया, क्योंकि आसक्ति थी, देखना चाहता था मेरा घर ठीक ठाक है कि नहीं है, तो सामने ही जन्म लिया मोची के बच्चे के रूप में। अब उसने जब उसको याद आया थोड़े समय बाद, अच्छा मेरा घर है, आ गया एक दिन दरवाज़ा खोलकर, वहाँ जो रहते थे उन्होंने डंडा मारकर भगाया, भाग अंदर कैसे आ गया, वो तो मोची का लड़का है, अंदर कैसे आ गया? वो कह रहे नहीं नहीं ये मेरा घर है, अरे मेरा, बाहर जाओ। पहचान बदल जाती है, इसीलिए सच्ची पहचान को हमें जानना है। क्योंकि पहचान जैसे आज हम बनाते हैं, किसी के गुणों से भी नहीं जानते, कम से कम हमें व्यक्ति के गुणों से उसकी पहचान करनी चाहिए। सुंदरता क्या है? हम लोग सोचते हैं सुंदरता बाहरी सुंदरता, कुछ थोड़ा बहुत दिखने में अच्छा है, शरीर अच्छा है, बॉडी अच्छी है, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता गुणों की सुंदरता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के गुणों को देखकर पता चलता है वो आया कहाँ से है, ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए एक एक बहुत सुंदर श्लोक है शास्त्रों में, मूर्खोपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः, यावत् च शोभते मूर्खो तावत् किंचित् न भाषसे। कि एक मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में आ गया, लेकिन उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा सूट बूट पहना हुआ है, आके बैठा सब लोग, कोई बड़ा आदमी है कुछ है, तो कहते कि तावत् च शोभते मूर्खो, उस मूर्ख की शोभा तब तक है यावत् किंचित् न भाषसे, जब तक मुंह नहीं खोलता। मुंह खोलता है तो विद्वानों को पता चल जाता है कौन है, चलो भाई इसको बाहर निकालो। तो इसी तरह इस जगत में जब हम लोग जानते गुण देखते हैं तो उससे पता चलता है कहाँ से आया। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति, मतलब जो स्वर्ग में था और उसने मनुष्य जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति के चार गुण दिए गए हैं। दान प्रसंगो मधुरा चवाणी, क्या क्या उसके लक्षण दिए गए, चार लक्षण है। दान प्रसंगो मधुरा चवाणी, देवर्चनम ब्रह्मणम तर्पणम च। तो चार लक्षण क्या है उस व्यक्ति के जो स्वर्ग से आए, और फिर नरक वाले के भी हैं वो बाद में बताएंगे, मैं पहले अच्छी बातें कर लें। कि आप लोग पहले नरक वालों के सुनना चाहते हो, आप में से कोई सोच रहा होगा आप स्वर्ग के बता रहे हो, हमारा तो कोई वर्णन ही नहीं कर रहे, तो आपका भी आएगा बाद में। तो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का पहला लक्षण है दान प्रसंगो, वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने में रुचि रखता है। दान, दान मतलब केवल धन का दान नहीं, ज्ञान का दान देना चाहे, दूसरों की मदद करना चाहे, अपना श्रम दान देना चाहे, हमेशा। तो पहला लक्षण है उस व्यक्ति का जो स्वर्ग से आया है, दान प्रसंगो। तो मतलब अगर कोई कंजूस है तो कहाँ से आया है, आप लोग बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे। तो शास्त्र में कहा पहला है दान प्रसंगो। ये क्यों है, क्योंकि जब तक हम एक स्वार्थ का जीवन जीते हैं, अपने लिए सब कुछ मेरे लिए, वो जीवन थोड़े समय के लिए अच्छा है, थोड़ा आनंद देता है, लेकिन उससे बड़ा आनंद दूसरों के लिए कुछ करने में है। आप लोगों को अनुभव होगा, अगर हम थोड़ा भी किसी के लिए कुछ करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, किसी को कुछ देते हैं, भले हमारे अंदर ये भाव होता है मैं दे रहा हूँ, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगता है तो देने में भी अच्छा लगता है ना, शेयरिंग, बांटना अच्छा होता है। और बांटने से क्या होता है, बांटने से आनंद बढ़ता है। एक बड़ा सुंदर बात हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि एक बार एक गांव में एक प्रतियोगिता हुआ करती थी कॉर्न उगाने की, कॉर्न मक्का। तो हर एक बार कौन सा किसान सबसे अच्छा उसका है, तो एक ही किसान हर बार जीतता था, उसका जो मक्का होता था बहुत अच्छे क्वालिटी का होता था और हर बार प्रथम आता था। तो पत्रकारों ने जाकर उसको पूछा, भाई ऐसा क्या करते हो कि आप, आपका ही हर बार बहुत अच्छा मक्का ये हो जाता है, आपको प्रथम पुरस्कार मिलता है, क्या करते हो ऐसा, तो कुछ बताओ ताकि और लोगों का भी लाभ हो। तो उसने कहा कि मैं जो अपने मक्के के दाने हैं आसपास के मेरे जितने खेत वाले हैं उन सबको देता हूँ। तो पत्रकार को आश्चर्य हो गया, क्योंकि किसी के पास कोई अच्छी चीज़ होगी छुपा के रखेगा ना, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो ये फर्स्ट आ जाएगा, मैं नहीं दूंगा ये। लेकिन उसने तो बोला कि मैं देता हूँ। अच्छा तो क्यों, तो सबको आश्चर्य हुआ। पत्रकार ने पूछा, ऐसे कैसे आप छुपा कर नहीं रखते, बांटते? बोले नहीं मैं बांटता हूँ। तो क्यों बांटते हैं? उन्होंने कहा अगर मेरे आसपास वालों के खेत में खराब मक्का होगा तो वो जो पोलन उड़कर आएगा वो मेरे मक्के को खराब कर देगा। तो अगर मेरा खेत अच्छा रहना है तो आसपास के खेत भी सारे अच्छे होने चाहिए, तभी मैं फर्स्ट आऊंगा। इसका अर्थ क्या है, हम अपने आसपास कैसे लोगों को रखते हैं वो हमारी फसल पर प्रभाव करता है। किन लोगों के साथ रहते हैं, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया, जो बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी जाएं, स्वाभाविक है ना। मान लीजिए आप में से कोई शराब नहीं पीता, कोई मतलब शायद कोई नहीं पीता, सो आप में से कोई शराब नहीं पीता, लेकिन आपके मित्रों ने कहा कि आपके चार मित्र पीते हैं आप नहीं पीते, तो उन्होंने यार कुछ चल नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक पी लेना साथ में बैठ के, तो चलो हम लोग एक पहले दिन चले गए, बिल्कुल मैं स्पर्श छूता भी नहीं हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे पांचवे दिन हमें लगने लगता है यार ये लोग इतने बुरे तो नहीं हैं, सही है कि नहीं, इतने बुरे थोड़ी हैं जितना हम सोचते थे, जितना हम सुनते थे। फिर छठे सातवें दिन लगता है कि थोड़ा सा हम भी ट्राई कर लें, क्या होगा, जरा सी कड़वी होगी और क्या होगा, आदत पड़ जाएगी। तो जैसा संग होता है वैसा ही हम लोग उस भाव में चले जाते। तो इसीलिए ऐसे लोगों का संग रखें जो लोग हमें ऊंचाई की ओर ले जाए, नीचे ना खींचे। और ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए वो व्यक्ति हमसे ऊंचा होना चाहिए, तभी तो वो ऊपर खींचेगा, अगर वो हमसे नीचे है तो नीचे खींचेगा। से इसीलिए पहला लक्षण बताया है उस व्यक्ति का कि दान प्रसंग। दान प्रसंग मतलब वो कभी अपने लिए नहीं, वो शेयर करता है सबके साथ, तो दूसरों के लिए कुछ करना। ये कभी कभी इसमें कष्ट होता है कि नहीं? आप कहीं घर के प्रमुख है, थोड़ा सा कष्ट होता है, समाज के प्रमुख है, थोड़ा सा कष्ट होता है ना? तो जो जो भी कुछ जिम्मेदारी लेता है उसको निश्चित कष्ट होता है, लोग कभी कभी उसके ऊपर आरोप करते हैं, लेकिन लेना चाहिए क्योंकि ये दूसरों के लिए कार्य हमें करना आवश्यक है, अपने लिए केवल नहीं जीना चाहिए। तो पहला लक्षण है दान। किसका लक्षण हम लोग चर्चा कर रहे हैं? स्वर्ग से जो आया हुआ है। दूसरा लक्षण है मधुरा च वाणी। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, मतलब उसकी जो वाणी है वो बड़ी मधुर होती है, वो हार्श नहीं बोलता। वैसे तो आजकल लोग ऐसा बोलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं इतना हार्श बोलते हैं कि लगता है कि कैसे ये लोग जी रहे हैं, उनसे सॉफ्ट बोला ही नहीं जाता। तो मधुरा च वाणी, मधुरा वाणी मतलब उसकी वाणी बहुत मधुर होती है। देखिए आजकल जितनी तकलीफें हो रही हैं ना समाज में, आधी से ज्यादा वाणी के कारण है। कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बस देख लूंगा तुम्हें, या जो भी झगड़े इसीलिए होते हैं। देशों में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं? किसी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किसी ने बोल दिया, मंत्री ने, बस खत्म हो गया दो देशों के बीच सारा। वो क्या था, कौन सा देश है वो? मालदीव्स। हाँ, उसने कुछ कह दिया और तो बोलना, चुप रहता मिनिस्टर तो कुछ नहीं होता, बस बोल दिया। तो ये बोलने में आजकल सारा है, इसीलिए वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, और भगवान भी इस बात को कहते हैं भगवद गीता में। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, वाणी क्या होनी चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि हमें कैसा बोलना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्यम। पांच लक्षण देते हैं भगवान। पहला कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा मत बोलिए जिससे सामने वाला उत्तेजित हो जाए। हम लोग जब शांत होते हैं तो ठीक से बात करते हैं, जरा सा किसी कारण से गुस्सा आ जाए या कुछ मन मुटाव हो जाए तो देखिए कैसे वाणी हो जाती है, पास में खड़े हैं लेकिन बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्य, ऐसा मत बोलिए कि दूसरा उत्तेजित हो जाए, मधुर भाषा। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ये वर्णन करते हैं, मृदुभाषी। भगवान राम जब बोलते थे तो इतना मधुर होता था कि कोई ना कह ही नहीं सकता। वैसे कृष्ण भी ऐसे ही थे, है ना? यशोदा मैया ने पूछा कि माखन खाया, माखन चोरी की? बिल्कुल नहीं। मिट्टी खाई? बिल्कुल नहीं। गोपियों के पास जाते थे और गोपी ने पकड़ लिया कि आज पकड़ लिया तुझे, अभी यशोदा के पास ले जाऊंगी, तूने तूने माखन चुराया मेरे घर में आकर। तो बड़ी मासूमियत से बोलते थे, चोरी? मैं तो सोचता था मेरा घर है ये। और तुम मुझे चोर कह रही हो, अपने घर में कोई चोरी करते तो बिचारी की आंखों में आंसू आ जाते थे, हाय मेरा बच्चा ऐसा कह रहा है, फिर छोड़ देते थे, कृष्ण चले जाते थे। मधुरा चवाणी। लेकिन मधुर वाणी का अर्थ क्या है? मधुर वाणी का अर्थ है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलकर किसी को धोखा देना ये मधुर वाणी नहीं कहलाती है, ये भी जान लीजिए। कि कई बार लोग सोचते हैं कि मधुर वाणी है, बोल बोल के किसी को धोखा देकर हम अपना काम करा लेंगे, बिल्कुल नहीं। सत्यम, और वो सत्य कैसा हो? प्रियम, व्यक्ति को प्रिय लगने वाला होना चाहिए सत्य। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि बेचारे का हृदय टूट जाए। जैसे एक बार वो अकबर बीरबल की कहानी है कि अकबर के पास एक ज्योतिषी आया, अकबर को देखकर उसने, अकबर ने कहा बताओ भाई हमारा क्या भविष्य है? तो उसने बताया कि आपके जितने रिश्तेदार हैं वो आपसे पहले मर जाएंगे। तो उसको बड़ा गुस्सा है, बोले इसका सर काट दो, ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे मेरे से पहले, इसका सर काट दो। तो उसको सजा कर दी गई। तो बीरबल को पता चला, बीरबल के पास वो गया, बचा लीजिए। तो बीरबल ने कहा, क्या कहा तुमने? बोले, मैंने तो वही कहा जो सत्य था, कि इनके सारे रिश्तेदार इनसे पहले मर जाएंगे। तो बीरबल ने कहा, मैं बताता हूँ उसको क्या बोलना है। तो बीरबल ने कुछ कहा, फिर से लेकर आए अकबर के पास कि नहीं नहीं वो गलत हो गया था उससे, एक बार और पढ़कर आपको सुनाएगा, तो बताओ क्या करना। तो उसने पढ़ा, उसने कहा, महाराज आपकी आपकी जो कुंडली है महाराज, आप अपने सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा जिएंगे। अकबर ने कहा, इसको उपहार दो, कुछ दो, बहुत अच्छी चीज कही। कहा क्या था उसने? दोनों वही बात थी ना, लेकिन मधुराचवाणी प्रियम, वो सत्य भी प्रिय होना चाहिए और हितम, व्यक्ति के हित में होना चाहिए। हाँ, मतलब हम फ्लैटरिंग नहीं करें, फ्लैटरिंग समझते हैं आप? जब फ्लैटरिंग का एक उदाहरण देते हैं, एक बार एक ऊंट की शादी हो रही थी। वे आप लोग सोचेंगे ऊंट की भी शादी होती है, ये कथा ही है, उसको कथा ही ले लीजिए। तो ऊंट की शादी हो रही थी, तो गधा भी चला गया उसमें, सबको बुलाया था, गधे को भी बुलाया था। अब गधा तो गधा है, तो कुछ गिफ्ट नहीं लेकर गया। तो जब अंदर पहुंचा तो देखा कि लाइन लगी है, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं ऊंट को। तो अब इसको लगा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं, अब जाऊंगा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी खाली हाथ, क्या करूं। तो खैर लाइन में खड़ा हो गया, पहुंचा। तो पहुंचने के बाद उसने देखा ऊंट को, और ऊंट को देखकर कहता है, अहो रूपम अहो रूपम, आप कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। आपने कभी पास से ऊंट को देखा है किसी ने, कि दूर से ही देखा? इतना भद्दा लगता है, इतना गंदा ऊंट का मुंह, उस पास से देखने में डर जाता है। दूर से अच्छा दिख, ठीक दिखता है, पास से देख ली। और उसको वो कह रहा है अहो रूपम, आपका रूप बड़ा अच्छा। तो वो भी समझ गया कि अब आप समझिए, किसी को पता हो कि मेरी शक्ल कैसी है, और उसको आकर कोई कहे कि चांद सी शक्ल है, जो भी है, तो क्या होगा उसका। तो उसने भी कहा गधे से, अहो ध्वनि अहो ध्वनि, आपकी आवाज कितनी मधुर है। हम सब जानते हैं गधा जब रेंगता है तो क्या आवाज आती है। तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हाँ, सत्य हमें हितम में होना चाहिए। तो इसलिए दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण क्या था स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का? दान, दान में रुचि होती है, अर्थात दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरा मधुर वाणी, वाणी बड़ी मधुर होती है उसकी। सदान प्रसंगम मधुरा च वाणी देवर्चनम, देवर्चनम मतलब उसकी रुचि भगवान में, भगवान की अर्चना में होती, भगवान की भक्ति में होती है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में देखकर आया है। हम लोग तो जब स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं हमारे मन में क्या आता है? अप्सराएं, सही है ना? झूठ अभी अभी बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए तो सच बोलना है। क्या आता है मन में? अप्सराएं, नंदन कानन वन, वो इंद्र शराब पी रहा है, उसमें भी दिखाया जाता है, कौन सा था वो, लिटिल कृष्णा, लिटिल कृष्णा, उसमें भी बेचारे इंद्र को इतना खराब दिखा, इतनी लंबी नाक उसकी कर दी, उसके बड़े बड़े कान, और वो शराब पी रहा है। ऐसा नहीं है स्वर्ग, ये तो केवल जरा सा एक भाग पता चल गया उसको ही बढ़ा दिया। स्वर्ग में सतत हरिनाम होता है, कथाएं होती हैं, क्योंकि स्वर्ग में ऋषि मुनि भी जाते हैं, ये केवल देवता नहीं रहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां रहते हैं, तो कथाएं चलती हैं। और जो देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये सब क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, गाते हैं भगवान के लिए। तो जो स्वर्ग रहकर आया, वो देख कर आया है, क्या करना है? हर समय हरि नाम होना चाहिए, हरि कथा होनी चाहिए। तो इसलिए उसकी रुचि यहाँ पर आकर हरि कथा में होती है, देवर्चनम, भगवान की कथाओं में, भगवान के नामों के उच्चारण में, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है, और कोई फैशन के लिए नहीं। हमने देखा है कि कुछ लोग भगवान की भक्ति फैशन के लिए करते हैं कि भाई मैं भी बहुत रिलीजियस व्यक्ति हूँ। हमारी जो इस्कॉन संस्था है यहाँ पर, तो खैर अभी बहुत छोटा सा है, बड़ा हो जाएगा। हमारे बहुत बड़े, आप में से किसी ने कोई भी इस्कॉन मंदिर देखा है इसके अलावा, यहाँ के अलावा? नोएडा, और कोई दिल्ली का देखा है, जयपुर, जुहू, बॉम्बे, बहुत बड़े बड़े हैं। तो जुहू में जो है हमारा मंदिर, तो उसके आसपास जितने हैं फिल्म स्टार्स रहते हैं, जुहू एरिया उनका है, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जुड़े हुए हैं। तो लोग इस्कॉन के मेंबर बनने में बड़ा प्राइड लेते हैं, करते कुछ नहीं है, हाँ, कोई भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को बताएंगे मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ, ये देखो। किस लिए? भाई वो इस्कॉन का मेंबर अमिताभ बच्चन भी है, इस्कॉन का मेंबर अन्य वो भी हैं, तो हम भी इस्कॉन के मेंबर हैं। तो भक्ति ये कोई फैशन के लिए नहीं करता ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग से आया है, छल नहीं है उसके अंदर। वो किस लिए करता है? वो जानता है कि मेरा संबंध है भगवान से, इसलिए केवल कुछ मांगने के लिए नहीं करता। हम लोग तो बचपन से केवल मांग ही रहे हैं भगवान से, है ना, सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे, तनका, और कुछ नहीं, बस यही सब मांगते रहते हैं। कभी हमने भगवान को पूछा आप कैसे हैं, आपको कोई कष्ट है? हमें लगता है ना उनको तो हो ही नहीं सकता कष्ट, पूछना ही नहीं है, उनको कुछ देना ही नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान को देने की भावना, भगवान से मांगने की भावना नहीं। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, जो हम में है ही नहीं। हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, उन्होंने इतना कुछ दिया है हमें, अब हमें और कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी मांगते रहते हैं। ज़रा सा कुछ हो जाए, भगवान बस बचा लो, ये कर लो, कितना तो दे दिया उन्होंने, आज नहीं जन्मों से दे रहे हैं। तो इसीलिए वो कैसे भक्ति करता है? वो भगवान की फैशन के लिए नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, डर से नहीं। हमें तो बहुत डराया जाता है ना भारत में, खास करके नरक जाओगे, ये नहीं करोगे तो ये होगा। अरे भगवान की भक्ति में डर कैसा? अगर डर से भक्ति है तो भक्ति ही नहीं है। आपको कहा जाए ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ठीक है, डर कर आप खड़े हो मंदिर में, दिया जला रहे हो, दिया जलाओ नहीं तो घर का दिया बुझ जाएगा, क्या है ये? ये कहां पर लिखा है? तो इसीलिए ये डर से भक्ति नहीं होती। आप सोचिए, आप डर से किसी से प्रेम कर सकते हो? आपके सर पर बंदूक रख दी जाए, कहो मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, अब बताओ क्या करो, सच्ची बताओ क्या करोगे? बंदूक रखी हुई है इधर, हाँ उस टाइम तो बोल दे। आप बोलोगे आपसे करते हैं, आपके पिताजी से करते हैं, आपके खानदान से करते हैं, बंदूक हटाओ, जिससे कहोगे उससे करेंगे। लेकिन क्या वो प्रेम है? डर है। तो इसी तरह भगवान से भक्ति ये डर से नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो इसलिए ना फैशन के लिए करता है, न इच्छा पूर्ति के लिए करता है, न डर से करता है, प्रेम से करता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपसे प्रेम है, बस, और कोई कारण नहीं है मेरा आने का, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, आपने बहुत दे दिया। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि किस लिए डर हो भगवान से? जिसने कुछ गलत किया वो डरे, हम क्यों डरे? हमने क्या गलत किया? तो ये तीसरा लक्षण है उस व्यक्ति का जो स्वर्ग से आए। याद है आप लोगों को तीनों कौन से हैं? दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवर्चनम च, बहुत अच्छा। और चौथा लक्षण उसका बताया गया है ब्राह्मणम तर्पणम च, भगवान की भक्ति करता है जो भगवान के भक्त हैं या जो धार्मिक क्रियाओं में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, उनके उनसे बहुत प्रेम करता है, उनका उनके उनसी सेवा करता है। ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद कहा करते थे, जैसे अमेरिका में, लंदन में आप जाइए, हम अभी पिछले लास्ट ईयर गए थे, अभी फिर जा रहे हैं 2 महीने बाद, तो वहाँ पर हमने एक बड़ी विचित्र चीज़ देखी। हमने सुना था लेकिन जो जब देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि वहाँ हर घर में कम से कम 2 से 3 कुत्ते मिलते हैं, लोग बहुत कुत्ते पालते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें लगता है कि यहाँ लोग कुत्ते पालते, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो बहुत कुत्ते हैं। सड़क पे नहीं दिखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर नियम है कोई स्ट्रीट डॉग नहीं होगा, जो होगा उसको उठा के ले जाते हैं, वो लोग अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन घर में कुत्ते बहुत हैं, तो लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। सो वो प्रभुपाद समझाया करते थे, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाइए, उधर बैठ लीजिए आराम से, कोई नहीं, ये कुर्सी है, या इधर आना चाहें तो आप इधर आ जाइए, आ जाइए। ओके सो नहीं ठीक है, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही इससे? ठीक, तो प्रभुपाद समझाया करते थे कि उन लोगों का एक मोटो है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। तो वहां अगर किसी को प्रसन्न करना है उसके कुत्ते की तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाता है। ये रिकॉर्ड कर रहे, बोले लंदन में मत भेजना, मैं जाना है मुझे वहां पर, लोग कहेंगे वहां आप हमारी बदनामी करते हो जाके। कट कर देना इसको बात। सुप्रभुपाद ऐसे कहते थे और वो सही भी है। तो इसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं तो वे उनके बहुत प्रिय हैं, तो अगर हम उन लोगों का गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, तो फिर भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये चार गुण बताए हैं, याद रहेंगे आपको। पहला कौन सा है? दान प्रसंगो। दूसरा मधुरा च वाणी। तीसरा देव अर्चनम च। चौथा ब्राह्मणम तर्पणम च। और ऐसे ही कुछ लक्षण उस व्यक्ति के हैं जो नरक से आया है, उनके भी बताएं। आप लोगों को क्या करना है? अभी आज के बाद ऐसा होगा कि आप जिसको देखोगे ये नरक से है कि स्वर्ग से है, ये कहाँ से आया, देखना शुरू कर दो। ऐसा मत करिएगा। ये तो केवल इसलिए बता रहे कि अपने अंदर उन गुणों को लाइए, दूसरों में मत देखिए कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया है, तुम नरक से आए हो। नरक से आए हुए व्यक्ति का पहला लक्षण बताया है कि वो अपने ही लोगों से शत्रुता करता है, अपने ही लोगों में शत्रुता करता है। जैसे इसका लक्षण हम लोग देखते हैं ना कि बच्चा माँ बाप के प्रति बहुत विरोधी हो जाता है। माँ बाप जो इतने अच्छे से पालते, हमारे भारत में तो बच्चा हो तो लड्डू बांटे जाते हैं ना, और फिर वही बड़ा होकर तो ये विरोही या विद्रोही हो जाता है वो। ऑफकोर्स उसका थोड़ा कारण पेरेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाता। या फिर और भी, तो अपने ही लोगों से जो द्वेष करता है, जो शत्रुता रखता है, वो व्यक्ति, वो पहला लक्षण है उस व्यक्ति का जो नरक से आया। हमें द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए, ऐसा चरित्र। देखिए भक्ति इतना सुंदर मार्ग है कि अगर सब पालन करने लगे ना तो ये चीजें अपने आप आती हैं। द्वेष नहीं होता, घृणा नहीं होती। किससे घृणा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, जब हम मानते हैं कि सभी भगवान की संतानें हैं। तो फिर, और ये तो बाहरी चीज है शरीर, किसी का शरीर कैसा है, किसी का शरीर कैसा है, उससे क्या फर्क पड़ता। आत्मा वही है। जैसे अगर हमने आज ये रंग के कपड़े पहने, आपने दूसरे रंग के कपड़े पहने, तो उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला। भगवद गीता में भगवान ये दृष्टांत देते हैं, ये बताते हैं। क्या बताते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। कि जिस तरह हम पुराने कपड़ों को जब फट जाते तो क्या करते, फेंक देते हैं, दूसरे कपड़े ले लेते हैं। ऐसे ही जब आत्मा के लिए शरीर रहने लायक नहीं होता, आत्मा दूसरा शरीर ले लेते हैं बस। तो ये क्या है, ये जो शरीर है ये कपड़ों के समान है, हम बदलते रहते हैं कपड़े, आत्मा वही रहती है। इसीलिए किसी का कपड़ा अच्छा है, किसी का नहीं है, उस आधार पर व्यक्ति को अच्छा बुरा नहीं मानना चाहिए। सच्ची सुंदरता गुणों की है। जैसे हमने कई बार एक पेंसिल का उदाहरण दिया है, आप में से किसी को याद है पेंसिल का उदाहरण? जो लोग दो तीन क्लास सुन चुके हैं शायद होगा, नहीं किसी को नहीं। आप कौन सी पहले क्लास में थे? हाँ? पांचवी छठी सुन रहे, अभी तक नहीं सुना है, नहीं सुना पेंसिल का। ओके, ये इसलिए हमने बताया कि जो हम सुंदरता की बात कर रहे हैं कि सच्ची सुंदरता किसे कहते हैं, बाहरी सुंदरता सुंदरता नहीं। तो पेंसिल बनाने वाले ने जब पेंसिल बनाई तो उसने पांच चीजें पेंसिल को कही और ये कहा कि ये पांच चीजें याद रखोगे जीवन सफल। और एक्चुअली हमारे लिए वो बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए पांचों चीजें। लेकिन अगर पांचों कहने जाएंगे समय बहुत हो जाएगा। यहाँ ना एक बड़ा अच्छा हमें लगा, घर में कहीं घड़ी नहीं है, है क्या? अरे वो आपके सामने, हमारे सामने तो नहीं है, हम बोले जा सकते हैं। क्या कितना समय हुआ? 7:45 ओके। टिल व्हाट टाइम इज द क्लास? कैन आई, व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम कैन आई गो ऑन? 12 o'clock? द वे यू सेइंग गो ऑन, बट आई नो जो लोग ऑफिस से आए हैं वो लोग बस ये सोच रहे हैं कि कब बंद हो, कब बंद हो। और अंशु मैम भी उधर ही बैठी है दरवाजे पे ताकि कोई बाहर ना जा पाए, तो ये लोग भी सोच रहे पीछे से तो जा भी नहीं सकते, क्या करें। कोई और दरवाजा है घर में? बंद किया। सो सीरियसली टेल व्हाट टाइम कैन आई, यू कैन टेल मी अकॉर्डिंगली आई विल गो। बट उन लोगों को दूर भी जाना है ना, किसी कुछ लोग को। कोई नहीं है फिर ठीक है, श्योर। सो ओनर ऑफ द हाउस से इसकी एटलीस्ट 1 hour 30 minutes मोर, आई हैव एडेड 1 hour। ठीक है, सो प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत बोलना। उसके बाद हम चाहते हैं कि आपके कोई प्रश्न वगैरह हो तो उनकी भी चर्चा करें, केवल हम ना बोलें, आप भी बोलें। सो पेंसिल को ये 5 चीज़ें बताई, बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो हम 4 जल्दी जल्दी कहेंगे, 5वीं जो हम कहना चाहते हैं कि सुंदरता क्या है उसको थोड़ा विस्तार से कहेंगे। तो पहला चीज़ उन्होंने बताया कि आपका उपयोग तब होगा जब आप किसी के हाथ में हैं, राइट। पेंसिल पेंसिल बॉक्स में पड़ी है, क्या फ़ायदा होने वाला है कुछ उसका? पड़ी रहेगी, सालों तक पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। मगर वही किसी के हाथ में आती है तब वो बहुत सुंदर रचना कर सकती है, उसका सही उपयोग होता है। सो हमारे जीवन में भी ये एक सबसे पहला नियम होना चाहिए अगर हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते, भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, कि हमें अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना होगा, अर्थात हमें किसी से मार्गदर्शन लेना होगा, गाइडेंस लेना होगा। हमें ये नहीं सोचना होगा मुझे सब आता है। भारत में आप कहीं जाओ किसी को बताने, अरे आप क्या बताओगे हमें, हमें सब पता है, भगवान, हम सब जानते हैं भगवान कौन है। तो ये जो भावना है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे एक बार एक लड़का गया गुरु के पास, स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुझे, कब बैठो बताता हूँ, कुछ बोलना शुरू किया, स्वामी जी ये तो पता है कुछ और बताइए। उन्होंने कुछ और कहा, अरे ये तो पता है कुछ और बताइए। तो उन्होंने कहा थोड़ा बैठो, तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। ग्लास लाए खाली, दूध का जार लेके आए, भरने लगे, पूरा भर गया ग्लास, वो अभी तक डाल रहे हैं। तो वो लड़का कहता, अरे अरे स्वामी जी दिख नहीं रहा क्या, ग्लास भर गया है। तो बोले यही तो समझा रहा हूँ, तुम मेरे पास कुछ सीखने के लिए आए हो लेकिन तुम्हारा ग्लास तो भरा हुआ है, जगह कहाँ है उसमें सीखने की। तो इसीलिए जब हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो खाली ग्लास लेके जाना चाहिए, मतलब हमें ऐसे ओपन माइंड से जाना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, ये सोच के नहीं कि मुझे तो सब पता है। तो इसलिए अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना चाहिए, प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक है। इंडिपेंडेंट नेचर यही हमारे अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हमें सब पता है, हमें जो करना है सब पता है। ये इंडिपेंडेंट स्वभाव सही कहीं पर भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में तो इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकता, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, भक्ति विशेषता अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, कैसे पाओगे? अपने मन से। इसी यही हुआ है आजकल कलयुग में, लोगों ने मन से भगवान को पाने का मार्ग बना लिया। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए हैं उसको, कि आप इससे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हम तो जहाँ बाहर जाते हैं विदेशों में, ऐसे ऐसे नाम सुनते जो आपने यहाँ सुने ही नहीं है। हमें किसी ने बताया कि वो एक फला फला क्लब है, स्पिरिचुअल क्लब है। हमने कहा स्पिरिचुअल क्लब, पहले तो वही नहीं समझ में आया हमें कि क्लब और स्पिरिचुअल, पर हमने करते क्या, बोले वीक में एक बार आते हैं, फिर वो सब बातचीत करते, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पार्टी, लेकिन वो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है कि ये हमारी भक्ति हो रही है। तो लोगों ने अलग अलग पथ बना लिए, बिल्कुल नहीं, हमें किसी के मार्ग पर चलना है। भगवान भी तो कहते हैं भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। स्वतंत्र मत हो, किसी से पूछो। देखिए हमें किसी जगह को नहीं पता होता तो हम किसी से पूछते, आजकल गूगल से पूछते तो है ना, आजकल गूगल ही गुरु बना हुआ है, लेकिन कोई तो है। तो ये पहली चीज पेंसिल को बताई। क्या बताया? किसी के हाथ में रहना है, और उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? मतलब हमें किसी के मार्गदर्शन गाइडेंस में रहना है। भगवान को पाना है तो ऐसे मत सोचिए कि अपने मन से हम पा सकते हैं। दूसरी चीज़ पेंसिल को बताया, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर 30 मिनट के ऊपर आपने एक भी मिनट लगाया, जैसे भरत ने रामचंद्र जी को कहा था कि 14 वर्ष के ऊपर एक भी दिन हुआ तो प्राण दे दूंगा मैं, उन्होंने कहा 30 मिनट के ऊपर एक भी मिनट हुआ तो खैर प्राण तो नहीं देंगे, प्राण ले लेंगे या क्या होगा पता नहीं। तो दूसरी चीज़ पेंसिल को बताई कि समय समय पर तुम्हें छीला जाएगा, छीलना बोलते हैं ना, पेंसिल छीलना है, शापन, शाप किया जाएगा, शापन। लेकिन चिंता नहीं करना, ये आपके अच्छी राइटिंग के लिए है। जानते हो ना, पेंसिल को लिखते लिखते वो मोटा हो जाता है उसके अंदर, फिर उसको थोड़ा सा शार्प करते। पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो कंपास बॉक्स में एक रबर, एक पेंसिल और शार्पनर रहता था, खोला फिर लिखना शुरू करते थे। तो शार्प किया जाएगा। तो हमारे लिए जीवन में क्या है, समय समय पर हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी। शार्प होना मतलब कोई इजी तो नहीं, उसको छीला जाता है कभी कभी। पहले तो किसी को शार्पनर नहीं होता तो हम लोग ब्लेड से छील देते थे, चाकू से छील देते थे ना, हाँ ऐसे ऐसे करके। तो सोचिए क्या कष्ट हो रहा है ना, अगर पेंसिल को एक व्यक्ति माना जाए तो उसको तो कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन किस लिए है? अच्छे के लिए। तो ये दूसरा संदेश हमारे लिए है कि जीवन में समय समय पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जीवन, ये जगत ही ऐसा है। आप सोचो कि आप समुद्र में हो और गीले नहीं होगे, पानी में खड़े हो समुद्र में तो गीले होना ही है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे हिमालय होता है, हिम का आलय मतलब हिम का भंडार, बर्फ का भंडार, उसको हिमालय कहते। विद्यालय, विद्या का भंडार। मदिरालय, मदिरा का भंडार। ऐसे ही ये है दुखालय, दुख का भंडार। कोई कमी नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। ढूंढना पड़ता है क्या? या कभी आप मंदिर में जाते हो, भगवान पिछले हफ्ते इतना प्रसन्न था, कुछ तो करो इस बार, जरा थोड़ा टेंशन आए, टेंशन ही नहीं आ रही है। कोई कहता है आप में से कोई जाता है कि भगवान पिछले बार पूरा हफ्ता बढ़िया नींद आई, इस बार सोच रहा हूँ हॉस्पिटल हुआ हूँ, जरा हाथ पांव तोड़ दो मेरा। कोई नहीं कहता, राइट? दुख की कमी नहीं है इस जगत में, आपको बिना मांगे मिल जाता है। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात भागवत में कही गई है प्रहलाद महाराज के द्वारा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे दुख बिना मांगे आता है, ऐसे सुख भी आता है। तो हम लोग वो नहीं समझते, हम लोग ये जानते कि दुख आ जाएगा बिना मांगे, लेकिन सुख भी आएगा भाग्य में लिखा है, तो उसके लिए भागना नहीं चाहिए, भागना तो कृष्ण के लिए चाहिए। तो दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का भंडार है। तो दुख आना ही है इस जगत में, तो कैसे हम दुख को झेलें, सामना कैसा करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो छीलना है, ये बारंबार होगा, हमें जानना चाहिए हमारे भले के लिए। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। हमारी अगर पराजय हो रही है, हम अगर हार रहे हैं, किसी चीज में विफलता है, तो वो विफलता हमारी सफलता की कुंजी है या मार्ग बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे ही बस अंधविश्वास कर ले बनेगा? नहीं, हम बारंबार एक बहुत उदाहरण, हमें बड़ा अच्छा लगता है ये उदाहरण, कि जब हॉर्स रेस होती है, घोड़ा भागता है हॉर्स रेस, देखा आप लोगों ने? यहाँ तो है नहीं हॉर्स रेस का, है क्या रेस कोर्स है? मूवीज में देखा। हाँ, हमें एक्चुअल में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, मूवी वाले इतना दिखा देते हैं कि कुछ जरूरत नहीं है देखने की, है ना? अमेरिका देखा आपने? मूवीज में देखा। जापान देखा? अच्छा आप तो गए हो, चलो जापान देखा है, मूवीज में देखा, सब दिखा देते। तो घोड़ा जब भागता है रेस में, तो जो घोड़ा भागता है उस पर पैसा लगाया जाता है, पता है आपको? पैसा लगता है, फिर वो जैकपॉट ये वो होता है। तो जिस घोड़े पर पैसा लग रहा है और जो घोड़ा जीत रहा है, मान लीजिए, तो घोड़ा किस लिए भाग रहा है? जीतने के लिए। उसको कुछ पता है घोड़े को कि जीतना क्या होता है और हारना क्या होता है? लेकिन वो भागता है, उसको वही मिलने वाला है। जीतेगा भी तो भी चने खाएगा, हारेगा तो भी चने खाने वाला। उसको कुछ नहीं है कि उसको फिर वो रसमलाई आएगा उसके लिए या कुछ, उसको तो वही खाना है। और उसको नहीं पता कि जीतना क्या होता है या पैसा क्या होता है, घोड़े को क्या पता ये सब। लेकिन फिर भी घोड़ा भागता है तेज, औरों से तेज भागना। क्यों? घोड़ा तेज भागता है क्योंकि उसका जॉकी एक्सपर्ट होता है। जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं पैसा लगाने वाले घोड़े घोड़े की रेस में, वो घोड़े को तो लगाते हैं लेकिन जॉकी देखते कौन है, जॉकी मतलब जो चलाता है, घोड़ा चलाता है। क्यों? क्योंकि वो जॉकी को पता होता है कि कहाँ मारना है घोड़े को, उससे उसको दर्द होगा और वो तेज भागेगा। ये एक्सपर्ट जॉकी है, तो उसको पता है, तो इसीलिए वो केवल चाबुक से नहीं मारता, उसके पैरों से भी मारता रहता है। जब पैरों से अंदर मारते घोड़े को दर्द होता है, घोड़ा भागता है। तो घोड़ा भाग रहा है जीतने के लिए नहीं, दर्द के कारण भाग रहा है, लेकिन उसको दर्द दिया जा रहा है उसको जिताने के लिए। ये भाव हमारा होना चाहिए कि जब जीवन में कष्ट आ रहे हैं हमें, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो जॉकी है, हमारे जो मालिक हैं, वो हमें कष्ट दे रहे हैं किस लिए, जीवन की दौड़ में जिताने के लिए। ये भाव हमारा होना चाहिए कि ठीक है कष्ट हो रहा है। इसीलिए ब्रह्मा जी को जानते हो आप लोग, कौन से सेक्टर में रहते हैं? ब्रह्मा जी को नहीं जानते है? आप जानते हैं ना? हाँ, क्रिएटर, वही सेक्टर वाले नहीं, क्रिएटर वाले बात हो रही। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कृष्ण को देखकर, वे कहते हैं कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बात सीख ली, तद अनुकंपा, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, कि भगवान जो कुछ है आपकी कृपा है, सुख है आपकी कृपा, दुख है आपकी कृपा, वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो गया। केवल ये जानकर, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जो कुछ है भगवान आपके। ये बड़ा कठिन होता है। सुख में तो हम कह लेते हैं, आपको कोई सफलता हुई, लोग कंग्रेचुलेट करने आते हैं, आप बोलते हैं भगवान की कृपा है, हो गया। दुख में नहीं मानते कि ये भी भगवान की कृपा है। आप बड़े बीमार पड़े हो, कोविड हो गया है, और लोग आएंगे, क्या हुआ रे, क्या पता है, हालत खराब है, क्या होगा, कैसे होगा, तब नहीं कहते कि भगवान की कृपा। तो जो ये मान लेता है कि सुख भी भगवान की कृपा है और दुख भी भगवान की कृपा है, सब कुछ सुख दुख ही नहीं, जो स्थिति है, मेरा परिवार भगवान की कृपा है, मेरा समाज भगवान की कृपा है, मेरा धन भगवान की कृपा है, सब कुछ भगवान की कृपा है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता। तो इसलिए जब दुख आए, जब छीला जाए हमें, तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है? कि मेरे तो कर्म ऐसे हैं कि बहुत कुछ आना चाहिए था, लेकिन मैं भगवान की शरण चला गया हूँ, इसलिए बहुत थोड़े में निकाल दिया भगवान ने। ये भाव हमारा होना चाहिए। तीसरी चीज पेंसिल को बताई कि आप जो भी गलतियां करोगे उसको मिटाया जा सकेगा। हम लोग देखते हैं ना, पेंसिल के पीछे ही रबर लगा होता है, इरेजर। तो हम लोग बचपन में तो ऐसे करते थे, लिखते थे, गलती हुई, पेंसिल घुमाई, उसको इरेज कर दिया, फिर लिख दिया। सो पेंसिल को ये कहा कि तीसरी चीज, तो ये हमारे लिए जीवन में बहुत ही, एक्चुअली पांचों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो तीसरी है कि हमें अपने मन से कुछ चीजें इरेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन सी चीजें? अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है जीवन में, उसको इरेज कर देना चाहिए कि रखते नहीं? पक्का इरेज कर देना चाहिए उसको,
इरेज कर देना चाहिए?
नहीं करना चाहिए। हम ये देख रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बोलते जाते, लोग होते, आप शुरू रहो, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कथा, बड़ा आनंद आ रहा है, चालू रहो, क्या सुन रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप बोलते रहो। सो जिस कभी किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, उसको सदैव याद रखना चाहिए, कृतज्ञता उसको कहते हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर छोटा सा भी किया, ये भगवान का लक्षण है, भगवान हमारी छोटी सी सेवा को याद रखते। कौन याद रखते? भगवान। कितने लोग सेवा करते हैं? लाखों करोड़ों करोड़ों लोग सेवा करते हैं, भगवान हर एक की सेवा याद रखते हैं। ये भगवान का लक्षण है, हम भूल जाते हैं। मान लीजिए आपको, आप 50-100 लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको याद रहेगा? हमें कई बार ऐसा होता, कोई मिलता, प्रभु जी वहां मिले थे मैंने आपको, एक एप्पल दिया था खाने के लिए, कहाँ याद रहता है किसने एप्पल दिया था खाने के लिए। भगवान वो भी याद रखते हैं, अगर हमने भगवान को छोटा सा एप्पल दे दिया कहीं खाने के लिए और भोग लगा दिया, भगवान उसको याद रखते हैं। तो इसीलिए उसको इरेज नहीं करना है। लेकिन अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है, इरेज करना है या नहीं करना है? उसको इरेज कर देना चाहिए, नेकी कर कुएं में डाल, उसको नहीं याद रखना है। पता है तुमको मैंने दिया था, याद है ना, एक बार मैंने तुम्हें एप्पल खिलाया था, भूलना नहीं, भूल जाना चाहिए। अच्छा किया, इरेज। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, इरेज करना है नहीं करना है? इरेज कर दे, मुश्किल है लेकिन करना चाहिए, क्योंकि रखकर तकलीफ हमें होनी है, उनको नहीं होनी है जिसने बुरा किया है। हम सोचते रहेंगे, अरे हाय हाय ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, भगवान उसका ऐसा करो ये करो, लेकिन वो व्यक्ति आराम से, हमने किसी के साथ बुरा किया याद रखना चाहिए, उसको इरेज नहीं करना चाहिए। कि चलो कर दिया, फिर से कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, उसको याद रखना है कि नहीं अगली बार ऐसा ना करूं मैं किसी के साथ। तो इसलिए तीसरी चीज है कि अगर गलतियां हैं जो भी हैं उसको हम इरेज कर सकें, लाइन मिटा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें पत्थर की लकीर होनी चाहिए और कुछ चीज़ें रेत पर लिखे हुए शब्द होने चाहिए जो हवा से भी मिट जाए। चौथी चीज़ पेंसिल को बताइए, तीन हो गई ना, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो लग रहा है। तो चौथी चीज़ जो पेंसिल को बताई कि आप किसी भी सरफेस पर लिख सकोगे। इसलिए देखते हैं ना, आप किसी के घर में जाओ जिनके घर में बच्चे हैं, तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि घर में बच्चे हैं क्या, दीवार पे कुछ तो लिखा मिलेगा कुछ तो, यू नो। या फिर अभी आजकल तो लोग कहीं भी कुछ भी लिख देते, मंदिरों की दीवार पे कुछ लिखा रहता है। हमें ध्यान है, हमें बार बार यही ध्यान आता है। हम एक बार गए थे, एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, किसी ने कहा नरसिंह देव का मंदिर है गुफा में ऊपर ही, वो तो हम लोग गए वहाँ, वहाँ पर रॉक्स वगैरह थी, दीवार थी, और मंदिर की दीवार पर एक वो हार्ट बना हुआ था, उसके अंदर से एक तीर जा रहा था। हमने कहा लोगों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा कहीं भी लिख सकते हैं। आजकल सही में हमारी जो चेतना है ना बहुत ख़राब हो गई है। हम लोग अभी मंदिर से ब्रह्मचारी हम लोग कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ऋषिकेश गए थे, राइट, याद है, हम लोग ऋषिकेश गए। तो ऋषिकेश में रुके थे, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि अब और ऊपर हिमालय की तरफ जाएंगे तो वशिष्ठ गुफा है वहाँ पर, तो वशिष्ठ गुफा में जाए दर्शन करना, तो वशिष्ठ गुफा चले गए। वो और 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ों पे, और फिर वहाँ हमने देखा कि गंगा जी बहुत विशाल है, बड़ा आनंद आया। हम लोग सब वहाँ पर थे, तो ऊपर एक ब्रिज था जैसा लक्ष्मण झूला वैसा ही बना हुआ, पुराना ब्रिज बना हुआ। हमने कहा चलो सब लोग चलते, तो ऐसे चढ़ के हम लोग पत्थर उत्थर पे से चढ़ के ऊपर गए कि ब्रिज पे जाएंगे। ब्रिज पे जाकर खड़े हुए, हम लोग सब खड़े थे, तो चलो फोटो खींच लेते हैं। तो हम लोग जस्ट खड़े हुए थे, तो एक व्यक्ति आके बोलते स्वामी जी थोड़ा सा आप उधर चले जाएंगे। तो हम लोगों ने गुस्सा आया, भाई हम क्यों जाएं, कोई हमने कोई पाप किया है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी खड़े हैं। तो हमने उसको पूछा कि क्या बात है, क्यों जाएं? तो उसने कहा यहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं। क्या शूट कर रहे हो? प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है वहाँ पर। प्री वेडिंग शूटिंग समझते हो? आप लोगों ने तो सुना नहीं होगा। अच्छा हो गया, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। क्या हो रहा है? लड़का यहाँ से भाग कर आ रहा है, लड़की ब्रिज के ऊपर, गंगा जी के ब्रिज के ऊपर, पवित्र स्थान में वशिष्ठ गुफा, जहाँ आपको वशिष्ठ जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ से लड़का भाग कर आ रहा है, यहाँ से लड़की भाग कर, द्रोण व्रोण लगे हुए हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, और वो हवा मार रहे हैं ताकि लड़की के बाल उड़े या जो भी है, और फिर वो ऐसे आकर वो प्री वेडिंग शूट हो रहा है। तो हमने उनको कहा कि ये जगह तो छोड़ देते कम से कम, ऋषिकेश जैसा स्थान, आपको वहां जाके प्री, आप जाओ ना स्विट्जरलैंड जाओ प्री वेडिंग शूट करो, कौन मना कर रहा है वहां पे जाके। तो ये चीज है कि हर सरफेस पर लिख सकेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हर जगह हो। तो क्या, लेकिन पेंसिल को इसका अर्थ क्या है, जीवन से हमारा इसका अर्थ क्या है? हर अवस्था में अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी सेवा को भगवान की कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। आज हम अच्छी स्थिति में हैं, भगवान की सेवा करेंगे, अच्छी स्थिति नहीं है फिर भी सेवा करें, अपने कर्तव्य को कभी ना त्यागी। अर्जुन त्याग रहा था ना, पूरी भगवद गीता भगवान ने किस लिए कही है, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था तीसरे अध्याय में, क्योंकि भगवान ने कहा कि भक्ति करनी है, बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें नहीं, घृणित कार्य मत करो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक तरफ आप बोल रहे हो कुछ गलत काम मत करो, दूसरी तरफ कह रहे हो मारो उन लोग को जाके, तो एक चीज़ बताओ ना क्या करूँ, भक्ति करूँ या युद्ध करूँ। तो भगवान ने कहा दोनों, क्योंकि सही आधार पर या सही मार्ग पर चलते हुए जीवन जीना ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितना क्या बना लिया, लेकिन हमारा जीवन कैसा हुआ। याद रखना चाहिए कि जिस दिन जीवन का अंत होगा और सामने अगर भगवान खड़े होंगे तो हमारा सर उनके सामने झुके नहीं, हम भगवान से कह सके कि भगवान आपने जो मुझे दिया था आपकी सेवा में लगा दिया, अब मैं आपके लिए तैयार हूं। तो ये जीवन होना चाहिए। इसीलिए चौथी बात कि हर सरफेस पे, मतलब हर अवस्था में हर स्थिति में अपने कर्तव्य को पूरा करना, उससे भागना नहीं। और पांचवी बात जो हम कहना चाह रहे थे, जिसके लिए पेंसिल का वर्णन शुरू हुआ, उसने कहा कि ये जान लो कि जो अंदर है वो महत्वपूर्ण है, बाहर है जो महत्वपूर्ण नहीं है। पेंसिल में बाहर क्या होता है, लकड़ी, उससे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अंदर है, लेड, लेड होता है ना, वो महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अंदर है वो महत्वपूर्ण है, ये बाहर का ये चमड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या महत्वपूर्ण है, गुण महत्वपूर्ण है, आत्मा का ज्ञान महत्वपूर्ण है, अपनी पहचान महत्वपूर्ण है, ये आध्यात्मिकता है। और इससे जुड़ना चाहिए धीरे धीरे, श्रवण सुनने के द्वारा, थोड़े अभ्यास के द्वारा, जैसे हम लोग जप का अभ्यास करते, भगवान के नाम लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये जप वप करना बूढ़े लोगों का काम है, रिटायरमेंट हो जाए फिर कुछ करने को होगा नहीं, खाली बैठे हो गए, माला ले लेना, जप कर लेना। लेकिन अभी तो हमारे अंदर बहुत कुछ करने का जोश है, तो नहीं। ये जप वो है कि जहाँ भगवान को धन्यवाद देते हैं उनका नाम लेकर। हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं ना। अच्छा ठीक है। सो ये पांचवी चीज़ उन्होंने बताई कि जो अंदर है वो महत्वपूर्ण। तो हमें अपने अंदर के गुणों को उत्पन्न करने पर ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। हमारा सारा समय शरीर को सजाने में जाता है, पूरा जीवन, राइट। एक गरीब आदमी भी अगर कैलकुलेट करे तो अपने ऊपर कितना खर्चा कर देता है, बचपन से कितना साबुन, कितना तेल, कितना शैम्पू, कितने कपड़े, ये सब शरीर के लिए करते हैं ना। ये इस तरह है कि जैसे एक बूढ़ी महिला थी, उसको शौक था तोता पालने का, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं सोने का पिंजरा लाऊंगी उसके लिए। वो सोने का पिंजरा लेकर आई, तोते को अंदर रखा, और सोने का पिंजरा रोज चमकाती थी, ये सोना एकदम चमकना चाहिए, और इतना चमकाने में व्यस्त हो जाती थी कि अंदर जो तोता था उसको खाने ही नहीं देती थी। थोड़े समय में क्या हुआ, मर जाएगा, स्वाभाविक है। हमारा भी यही हाल है, ये जो पिंजरा है ना शरीर नाम का पिंजरा, हम इसको बहुत चमकाते रहते हैं दिन भर, लेकिन पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो अंदर पक्षी है, एक हमने बहुत पहले एक गाना सुना था कव्वाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। सो ये पिंजरे को चमकाना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ अंदर कबूतर जो है, अंदर जो पक्षी है, उसको भी कुछ खिलाते रहिए, और वो है भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।